सुबह की हल्की धूप हवेली के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। घड़ी की सुइयां 7 बजा रही थी। कमरा अब भी शांत था। बस ड्रेसर के पास से आती किसी परफ्यूम की खुशबू और हल्की कॉफी की महक, जो शायद नौकरानी थोड़ी देर पहले रख गई थी। विश्वनाथ आईने के सामने खड़ा था, ग्रे शर्ट, काली टाई और वही नीला कोट जो उसकी पहचान बन चुका था। उसकी हर हरकत सधी हुई, सटीक और नपे तुले अंदाज में थी। घड़ी की स्ट्रैप ठीक करते हुए उसने शीशे में अपनी झलक देखी। चेहरा वही सख्त, ठंडा और असरदार, जैसे रात की सारी सोच कहीं गुम हो चुकी हो। बिस्तर पर श्यामली अब भी आधी नींद में थी। उसने करवट ली, आंखों में हल्की नींद बाकी थी। पर्दे के पीछे से आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो उनींदी आवाज में बोली, आप जा रहे हैं? विश्वनाथ ने जरा भी पलटकर नहीं देखा। हाँ, बस इतना कहा, जैसे कोई औपचारिक जवाब हो। वो अलमारी से फाइलें निकाल रहा था, घड़ी की ओर देखा, फिर मोबाइल उठाया। ड्राइवर को बोल देना कार 10 मिनट में निकलनी है। श्यामली धीरे से उठ बैठी। उसके बाल बिखरे हुए थे, साड़ी का पल्लू आधा लिपटा हुआ। उसने चुपचाप देखा। वो आदमी जो रात को कुछ देर के लिए इंसान लगा था, अब फिर उसी पत्थर जैसे चेहरे में बदल गया था। आपने नाश्ता नहीं किया? उसकी आवाज अब थोड़ी संभली हुई थी। विश्वनाथ ने टाई ठीक करते हुए कहा, ऑफिस में कर लूंगा। लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी, फिर रुक गई। वो धीमे से मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान पूरी नहीं थी। श्यामली, तुम्हें इतनी बातों की आदत नहीं डालनी चाहिए। ये घर कोई फिल्मी रिश्ता नहीं है। उसके शब्द सीधे थे, पर उनमें कुछ छुपा था, जैसे खुद से कहा हो, खुद को याद दिलाने के लिए। श्यामली के होंठ हल्के कांपे। उसने धीमे से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, उसने सूखे स्वर में कहा, बस ये कि तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए, हमारा रिश्ता बस एक औपचारिक समझौता है। ना मैं किसी भावुकता में विश्वास करता हूँ, ना किसी दिखावे में। वो पलटकर आईने से हटकर उसकी ओर मुड़ा। तुम्हें यहाँ आराम से रहना है, बस, बाकी सब मेरे नियमों के अनुसार चलेगा। श्यामली ने निगाह नीचे झुका ली। उसकी उंगलियां पल्लू से खेल रही थीं, जैसे किसी को मनाने का हक ना हो, फिर भी कुछ कहना हो। मुझे पता है, उसने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी बस एक गुड मॉर्निंग भी काफी होता है। विश्वनाथ कुछ पल चुप रहा। वो उसे देख रहा था, ना उसकी आवाज में कोई जिद थी, ना शिकायत, बस सादगी। उसने हल्का सिर झुकाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग। वो शब्द उसके होंठों से निकले जरूर, पर उनमें कोई गर्माहट नहीं थी। फिर भी श्यामली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। विश्वनाथ ने कोट उठाया, ब्रीफकेस लिया और दरवाजे की ओर बढ़ा। आप तो रोज ऐसे ही जल्दी जाते हैं, उसने पीछे से कहा। हाँ तो, उसने जवाब दिया, क्योंकि काम करने से बेहतर कुछ नहीं होता। वो रुक गया, और मुझे फालतू बातों का शौक नहीं है। उसका लहजा भले सख्त था, पर उसके अंदर एक अजीब सी झिझक थी, जैसे खुद से बचने के लिए वो और कठोर बन रहा हो। श्यामली ने धीमे स्वर में कहा, आप बहुत बदल जाते हैं सुबह के वक्त। विश्वनाथ ने बिना पीछे देखे कहा, सुबह असली चेहरे दिखाने का वक्त होता है श्यामली, रातें तो अक्सर धोखा देती हैं। वो वाक्य उसके भीतर तक उतर गया। श्यामली कुछ बोल नहीं पाई, बस देखती रही। वो आदमी जो कभी किसी बात पर नहीं रुका, उसने जाते जाते एक पल के लिए दरवाजे पर ठहर कर उसे देखा। बहुत हल्का, बस एक सेकेंड का ठहराव, फिर जैसे खुद को याद दिलाया, कमजोर मत पड़ो, उसने ठंडे स्वर में कहा, डिनर में देर से करूंगा, मेरे लिए इंतजार मत करना। श्यामली ने सिर हिलाया, ठीक है। वो बाहर चला गया, दरवाजा बंद हुआ और कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। श्यामली ने लंबी सांस ली, फिर खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर ड्राइववे में काली गाड़ी खड़ी थी। विश्वनाथ ड्राइवर से कुछ कह रहा था और अगले ही पल कार हवेली से बाहर निकल गई। वो दूर तक देखती रही। धूप अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी, पर उसके भीतर कहीं हल्का अंधेरा बाकी था। वो धीरे से बिस्तर के पास आई, वही तकिया उठाया जिस पर वो रात को सोया था। उस पर अब भी हल्की परफ्यूम की महक थी। नफरत कहते हैं, उसने खुद से बुदबुदाया, लेकिन नफरत भी महसूस करने के लिए दिल चाहिए। वो मुस्कुराई, बहुत हल्की, लगभग अदृश्य, फिर धीरे से बोली, शायद किसी दिन आप भी महसूस करेंगे कि मैं बोझ नहीं हूँ। हवेली की घड़ी ने 8 बजाए। नीचे नौकरों की हलचल शुरू हो चुकी थी और श्यामली अपने शांत कमरे में अकेली रह गई, जहाँ पिछली रात की अनकही बातें अब भी हवा में तैर रही थी। उसने पर्दे खोले, धूप पूरे चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखों में वही मासूम चमक लौट आई। कभी कभी कुछ रिश्ते प्यार से नहीं, बस फर्ज और दूरी के बीच पनपते हैं, पर वक्त के साथ वो फर्ज भी किसी एहसास की तरह गहराने लगता है। सुबह की हल्की धूप अब पूरे शहर पर फैल चुकी थी। छोटे से औद्योगिक इलाके के बीचों बीच विश्वनाथ टेक्सटाइल मिल्स की ऊंची चिमनियों से धुआं निकल रहा था। हर तरफ मशीनों की आवाज, धागों की महक और रफ्तार का एहसास था। यही था विश्वनाथ का साम्राज्य, एक ऐसा नाम जो छोटे शहर से उठकर अब विदेशों तक फैला था। भारत ही नहीं, दुबई और लंदन तक शर्मा फैब्रिक की डिमांड थी। कहते हैं किसी भी ब्रांड की ड्रेस में अगर ये कपड़ा हो तो उसकी पहचान अलग होती है। कारखाने के भीतर कामगार अपने अपने स्टेशन पर व्यस्त थे, मशीनें घूम रही थी, कपड़े के रोल्स बन रहे थे और बीच बीच में सुपरवाइजर आदेश दे रहे थे, जल्दी करो, दोपहर तक एक्सपोर्ट का ट्रक निकलना है। गेट के पास काली गाड़ी रुकी। विश्वनाथ उतरा, हमेशा की तरह सटीक कपड़ों में, ग्रे सूट, काले जूते और चेहरे पर वही ठंडा आत्मविश्वास। जैसे ही वो अंदर आया, सबने झट से गुड मॉर्निंग सर कहा। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ गया। केबिन में पहले से कोई था। एक अधेड़ उम्र का आदमी चश्मा लगाए फाइलों में कुछ देख रहा था। वो था हरेंद्र, विश्वनाथ का पुराना दोस्त और सलाहकार, जो उसके साथ उस वक्त से था जब ये फैक्ट्री बस एक छोटे से गोदाम जितनी थी। हरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग विश्व, आज फिर 5 बजे से उठ गए क्या? विश्वनाथ ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। पुराने आदमी जल्दी उठ जाते हैं हरेंद्र, और काम भी इंतजार नहीं करता। हरेंद्र ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये यूरोप की नई डील है, थोड़ा ध्यान से देखना। और हाँ, सुना है तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली है। विश्वनाथ की नजर फाइल पर टिक गई, लेकिन उसकी उंगलियां ठहर गईं। काम की बात करो हरेंद्र, उसने सख्त स्वर में कहा। हरेंद्र मुस्कुराया, तुम अब भी वही हो, बात दिल की हो या घर की, हमेशा काम से ढक देते हो। विश्वनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के पार देखा, जहां फैक्ट्री का हर कामगार उसके इशारे पर चलता था। इस दुनिया में, उसने धीरे से कहा, जो भावुकता से काम करे वो बिजनेस नहीं चला सकता, यहां सिर्फ हिसाब चलता है, और मैं वही करता हूं। हरेंद्र ने सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता भी थी, जैसे वो जानता हो कि विश्वनाथ जितना सफल हुआ है उतना ही अकेला भी।